नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। श्री जयशंकर ने आज टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदनों में यूपीएससी छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सर्वोच्च न्यायालय का बिहार में 65% जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी कांस्य पदक जीतकर फाइनल में पहुंची। नमिता जिंदल 10 मीटर महिला एयर राइफल के फाइनल में 7वें स्थान पर रही। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड का मंच सहयोग और साझेदारी का आज के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ जयशंकर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि क्वाड विदेश नीतियों का बहुत ही गहराई से चिंतन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक क्वाड को नई दिशा देने में बड़ी मददगार होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड के सदस्य देशों के नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से इस मंच के विकास को आगे बढ़ाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड विश्वसनीय दूरसंचार और समुद्री केबल कनेक्टिविटी से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। साथ ही साइबर और स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी सुविधाओं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व में स्थिरता, सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से आज का समय चुनौतियों से भरा है और इसलिए विश्वसनीय साझेदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जरूरी हो गया है।
These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships.
क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज टोक्यो में बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के अलावा जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है और वर्तमान सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के कारण देश में बेरोजगारी दर कम होकर 3.2% हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में बेरोजगारी दर 3% से नीचे आ जाएगी। आम बजट की सराहना करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज से 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान होंगे।
मोदी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कई टाइप की योजनाएं चलाई गई, लोगों को रोजगारी का अवसर मिला और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 3.2% है।
श्री मांडविया ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
साइबर अपराधियों से सावधान, शेयर मार्केट से तुरंत पैसे बढ़ाने, घर बैठे पैसे कमाने जैसे लालच देकर या फिर नकली पुलिस, सीबीआई, कस्टम अधिकारी बनकर सिम या बिजली बंद होने की धमकी देकर या फिर अनजाने नंबरों से वीडियो कॉल करके साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। सतर्क रहें, शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली के कोचिंग सेंटर में यूपीएससी छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है।
एक बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज थ्री स्टूडेंट्स इज द अटर एंड एब्सोल्यूट एपथी ऑफ द आम आदमी पार्टी रूलिंग डिस्पेंसेशन इन दिल्ली।
कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि ऐसी घटना में कितना भी मुआवजा दिया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया। श्री थरूर ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की।
It's a shocking situation and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime.
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। राज्यसभा में भी इसी घटना पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए मामले की विस्तृत जांच करने और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन के नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताए जाने के बावजूद निकासी प्रणाली को स्वच्छ और सुचारू बनाने का कोई कदम नहीं उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की। डीएमके के तिरुचि शिवा ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा देश के प्रतिभाशाली युवाओं, शहरों की मूलभूत सुविधाओं और शासन के अन्य पहलुओं से जुड़ा हुआ है। श्री धनखड़ ने कहा कि कोचिंग वास्तव में व्यापार बन गई है।
कोचिंग हैज बिकम वर्चुअली कॉमर्स। एवरी टाइम वी रीड अ न्यूज़पेपर, फ्रंट वन और टू पेजेस आर बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। इन अ कंट्री वेयर अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग एनलार्ज्ड, दिस साइलो इज टर्निंग आउट टू बी अ प्रॉब्लम।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने कोचिंग हादसे मामले में पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें इमारत के बेसमेंट के मालिक और गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि जांच सभी दृष्टिकोण से चल रही है। पुलिस ने नगर निगम से कुछ जानकारी मांगी है, साथ ही उसकी भूमिका की भी जांच करेगी। दिल्ली नगर निगम ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और करोलबाग जोन के एक सहायक इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। नगर निगम की एक टीम ने कल इस इलाके में कई कोचिंग सेंटर की तलाशी ली और बेसमेंट में वाणिज्यिक गतिविधियां चला रहे संस्थानों को सील कर दिया। लोकसभा में आज आम बजट 2024-25 पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने दावा किया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन लगातार कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। उन्होंने अग्निवीर योजना और जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। भाजपा के सुरेश कुमार कश्यप ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह देश को नई दिशा देगा और आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है तथा युवाओं और महिलाओं के लिए बजट में कई पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में कल आयोजित हो रहे एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका विषय है जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ कर रहा है और इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और इस दिशा में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज संबंधित धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य प्रत्येक छात्र की क्षमता को सामने लाना है। ये देश में शैक्षिक परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम ABSS 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। पूरे दिन चलने वाले इस आयोजन में देशभर से शिक्षक, छात्र और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में 60 रूपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर की बिक्री करने वाली राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ की वैन को रवाना किया। टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए दिल्ली NCR क्षेत्र में रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू हो गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री यादव ने बाघ संरक्षण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए वन्य कर्मियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश को देश में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है क्योंकि यहां देश में सबसे ज्यादा 785 बाघ हैं। विश्व बाघ दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट बनाने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं और करीब 25 लाख पर्यटक प्रदेश में आ रहे हैं। इससे 55 से 60 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्रदेश को मिल रहा है। डॉ यादव ने किंग कोबरा सहित प्रदेश से विलुप्त हुई जीव जंतुओं की अन्य प्रजातियों के संरक्षण का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बाघ पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल भारतीय समय के अनुसार दिन में 1 बजे उनका सामना दक्षिण कोरिया के ओ ये जिन और ली वोनहो से होगा। दूसरी ओर रमिता जिंदल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में 7वें स्थान पर रहीं। सीरीज 2 के अंतिम शॉट में रमिता का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिससे उन्हें मात्र 9.7 अंक मिले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। श्री जयशंकर ने आज टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। संसद के दोनों सदनों में यूपीएससी छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सर्वोच्च न्यायालय का बिहार में 65% जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।